ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज का विषय है आधुनिक काल में आध्यात्मिक जीवन। दोनों में विरोधाभास लगता है, आधुनिक काल एक ओर और आध्यात्मिक जीवन दूसरी ओर। दोनों का मिलन कभी हो सकता है ऐसे कभी कभी मन में विचार आता है। जिस प्रकार से आधुनिक समाज आगे बढ़ रहा है, हम तो बढ़ रहा है नहीं कहते, हम तो पिछड़ रहा है कहते हैं। उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये लगेगा कि आध्यात्मिक जीवन प्राय इस समय असंभव है। विरला ही कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनको आध्यात्मिक जीवन में रुचि है, विरला ही ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं जो प्रामाणिकता से शास्त्रों के आधार पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, विरला ही ऐसे लोग मिलते हैं जो कि वास्तव में अपने जीवन में शास्त्रों के वचनों का आचरण करते हैं। इसलिए कलयुग में लोगों की श्रद्धा धार्मिकता में बहुत कम होती जा रही है, साथ साथ में भौतिकता इतनी बढ़ रही है कि भौतिकता की वजह से अच्छे अच्छे संस्कार वाले लोग, अच्छी संस्कृति वाले कुटुंब में धीरे धीरे से गिरते जा रहे हैं। ये तो सारे समाज में दिखाई पड़ रहा है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुताः। श्रीमद् भागवत में कलयुग का वर्णन आता है कि इस कलयुग के लक्षण क्या होंगे। प्रायेण अल्प आयुषः, लोगों की आयु प्राय बहुत अल्प होगी, बहुत कम होगी। कलौ अस्मिन् युगे जनाः कि इस कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः, बहुत आलसी होंगे, विशेष करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भौतिक जीवन के लिए तो बहुत उत्साही होंगे, बहुत क्रियाशील होंगे, परंतु जहां तक आध्यात्मिकता की बात आती है तो बहुत आलसी होंगे, इच्छा नहीं होगी। सुमंद मतयः, हमेशा उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो गलत मार्गदर्शन करते हैं, तो सही मार्ग को त्याग कर किसी गलत मार्ग में चले जाते हैं। मंद भाग्या, दुर्भाग्यशाली हमेशा होते हैं। हर जीवन में, हर व्यक्ति में आजकल इतनी सारी समस्याएं मन में होती है, हम देखते हैं कि प्राय हर एक व्यक्ति इस कलयुग में दुर्भाग्यशाली है। चाहे किसके पास कम हो, किसी के पास ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं है। और अंत में उपद्रुता, बड़े विचलित होते हैं, बड़े बेचैन होते हैं मन से, क्योंकि इस कलयुग का वातावरण है ही ऐसा। इसलिए तो इस युग का नाम है कली युग, कलह, कलह अर्थात झगड़ा। तो जिस युग में झगड़े का प्राधान्य है, जहां पे इतनी सी बात पे इतना झगड़ा होता है, बिना वजह झगड़ा, वो है कलयुग। कोई कारण नहीं होते हुए भी लोगों में गलत फहमियां, लोगों की एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बिल्कुल टूट जाना, लोगों में बिल्कुल क्षमा भावना नहीं रहना, सहनशीलता नहीं रहना, बहुत ही स्वार्थी होना, ये सब कलयुग के लक्षण है। आजकल देखा जाए तो ये स्वार्थी जो गुण है, स्वार्थ का जो गुण है, ये सारे समाज को नष्ट कर रहा है। सही है ना? स्वार्थ जब तक रहेगा तब तक समाज का कल्याण कभी नहीं होगा। स्वार्थ हमारी शारीरिक दृष्टि से, परंतु वास्तविक स्वार्थ क्या है? प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि सच्चा स्वार्थ क्या है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, वो कभी भी अपना भला क्या है वो नहीं जानेगा। नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेपी शतंत्र्याम उरुदाम निबद्धाः। वो कहते हैं कि लोग ये नहीं जानते इस स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। स्व और अर्थ, स्व मतलब मैं और अर्थ मतलब लाभ या हित। तो जब मैं अपने आप को शरीर समझता हूं तो केवल मेरे शरीर के आनंद के लिए, शारीरिक सुख के लिए, और शरीर से जितने भी संबंधित व्यक्तियां हैं और वस्तुएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा सारा प्रयास रहेगा, तो ये मेरा स्वार्थ रहेगा। परंतु ऐसे स्वार्थ रहने से सारे समाज में उत्पात हो जाएगा, और यही हम देख भी रहे हैं कलयुग में। हर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ लेके चल रहा है, इसलिए झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं। परंतु यदि हम जान ले कि भगवद गीता के आदेश के अनुसार ये स्व शब्द का अर्थ है आत्मा, कि मैं आत्मा हूं, ये नश्वर शरीर नहीं हूं, फिर हमारे सच्चे स्वार्थ क्या है, हमारा सच्चा भाग्य क्या है, इसका उदय होगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि लोग अपने आप को शरीर समझ के केवल इस दुनिया के चमक धमक से बहुत प्रभावित होते हैं। नते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उनका जो स्वार्थ है, उनकी जो गति होनी चाहिए जिससे कि उनका सही स्वार्थ होगा, ये भगवान विष्णु या कृष्ण में है, ये उनको नहीं मालूम। दुराशया, क्यों ऐसे है? दुराशाओं से मन उनका भरा हुआ है, दुराशा मतलब गलत आशाएं, भौतिक भोग के लिए, भौतिक कामनाओं से, भौतिक वासनाओं से मन भर गया है, इसे कहते हैं दुराशा। ये बही अर्थ मानिनः कि बही मतलब जो बाहर की चीजें हैं, पैसा है, गाड़ी, बंगला आदि, ये दुनिया के चमक धमक को, इन बाहरी चीजों को मूल्यवान समझ के जो आदमी चलता है तो वो कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। अंधा यथांधे उपनीयमाना तेपीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। प्रहलाद जी कहते हैं कि समाज में जो अधिकतर नेता होते हैं वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होते हैं, और यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है तो प्रजा भी अंधी है, और अंधे अंधे को ले जाते हैं तो फिर दोनों कहां पहुंचेंगे, किसी अच्छी परिस्थिति में नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे संस्थापक आचार्य भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हमारा सारा समाज नारकीय अवस्था की ओर जा रहा है, क्योंकि सभी लोग इस कृष्ण भक्ति के मार्ग को त्याग कर केवल स्वार्थ के, शारीरिक स्वार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि प्रकृति के कड़े नियम जो है उनको बांध के रख रहे हैं। ईश तंत्र्याम, हम सब बद्ध हैं फिर भी हम अपने आप को मुक्त मान रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस चमक धमक के आकर्षण से जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होगा, जब तक वो लालसा, वो कामना नहीं रहेगी उसके मन में, नहीं जाएगी, तब तक वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। निवृत्त तर्षे रूपकीय माना ते पीश तंत्र्या मुरुदाम निबद्धा। भवौषध श्रोत्र मनोविरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात विमान पुरज्येत बिना पशुनाथ। परीक्षित महाराज भी भागवत में कहते हैं कि जिस व्यक्ति की हृदय में तृष्णा नहीं है भोग की, जिसका पेट भर गया है कि अभी और मुझे भोग नहीं करना है बस, तब वो व्यक्ति बड़े ध्यान से भगवान कृष्ण की भक्ति करके अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। परंतु आजकल ऐसी भावना का प्रचार बहुत कम हो रहा है। आप टेलीविजन खोलिए और देखिए, आप कोई पत्रिका खोलिए, आप समाचार पत्र खोलिए, जो सड़कों में विज्ञापन होते हैं वो देखिए, सब जगह एक ही संदेश दिया जा रहा है, भोग करो भोग करो। है ना, बेलगाम में भी हम अभी 2-3 साल से 5 साल में कम आए, लेकिन हर बार जब आते थे 6 महीने के बाद तो देखते थे कितना बदल गया है। वो विज्ञापन देखते कि हमको पता चलता है कि बेलगाम किस दिशा में जा रही है। पहले ऐसे बेलगाम में नहीं देखते थे हम, अभी बेलगाम में भी खुलेआम बड़े बड़े ऐसे सब चीजें लगाए रहते हैं विज्ञापन के नाम पर। तो हमारी युवा पीढ़ी खराब नहीं होगी तो और कैसे होगा, और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से सब समाज नारकीय अवस्था की ओर चल रहा है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस। ये तीन लोभ, ये तीन द्वार के बारे में बात करते हैं। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। नरक के लिए तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ मतलब और भौतिक चीजें प्राप्त करने की इच्छा, और ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये दिल मांगे मोर मोर मोर, और जितना ज्यादा मिले उतना ज्यादा सफलता, ऐसे माना जाता है। तो जब लोभ के कारण हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं, काम। और जब काम वासना को तृप्त करने में कोई रुकावट आ जाती है तो क्या होता है? क्रोध। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये तीन नरक के द्वार हैं, इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीन चीजों को त्यागना चाहिए। तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत, त्याग देना चाहिए, क्योंकि हमको नरक की ओर ले जाते हैं। परंतु किस तरह त्यागें, क्या उपाय है हमारे लिए, जबकि सारा समाज हमको यही बता रहा है कि काम क्रोध और लोभ को प्राप्त करो, उसको बढ़ाओ। केवल भगवत गीता में आके या भक्तों के संग में आके हम सुनते हैं बिल्कुल विपरीत बात। तो परीक्षित महाराज भागवत में यही कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण के भक्तों के संग में आना चाहिए। भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामात, ये भव रोग के लिए औषधि है। जिस कृष्ण कथा कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन करने मात्र से हृदय शांत हो जाता है, हृदय में जितने भी काम वासनाएं हैं, जितने भी भोग करने की प्रवृत्तियां हैं, जितना भी स्वार्थ है, ये लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि सब भरे हुए हैं हृदय में, जिसके कारण मन अशांत हो जाता है, वो केवल कृष्ण कथा के दिव्य अमृत वर्षा के कारण बुझ सकते हैं ये अग्नियां। और व्यक्ति शांत चित्त का हो सकता है, प्रसन्न चित्त का हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का यही संदेश है कि हमें सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इस काम क्रोध आदि के पद को त्याग कर धार्मिकता के पद को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भी कई लोग हैं, अच्छे संस्कार हैं उनके हृदय में, वो भी धार्मिकता के पथ में चलना चाहते हैं, परंतु मार्गदर्शन सही नहीं होने के कारण नहीं कर पाते हैं, फिर अपने तरह से धर्म का पालन करते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि एक घर में एक विवाह हुआ था, ये कहानी भी शायद आप कई सुन भी चुके होंगे, बहुत पहले की बात है। तो विवाह यज्ञ जब संपन्न हो रहा था तो अचानक वहां पर एक बिल्ली आ गई। बिल्ली जब पास में आई तो पुरोहित ने कहा, रे देखो बिल्ली को हटाओ। तो फिर सभी लोग इधर उधर भागे बिल्ली के पीछे, बिल्ली को पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता है। खैर किसी ने किसी तरह से बिल्ली को पकड़ लिया। फिर पकड़ के क्या करें, बिल्ली को छोड़ दें तो फिर से बिल्ली आ जाएगी। तो फिर लड़की के मां ने क्या किया, लड़के के मां ने, कि एक बड़ा बर्तन लिया और बिल्ली के ऊपर डाल दिया ताकि बिल्ली वहीं पर रहे, और जब शादी का अनुष्ठान समाप्त हो गया तो बर्तन खोल के बिल्ली को छोड़ दिया। तो कई साल बीत गए, वर वधु उम्र में बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, उनके भी बच्चों का विवाह का समय आ गया, तो घर में बड़ा अनुष्ठान मनाया गया, विवाह होना है, पुरोहित बैठे, वर वधु बैठे। फिर वर की माँ को याद आया कि अरे हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तो एक बिल्ली लाए गए था और बिल्ली के ऊपर बड़ा बर्तन डाला था, वो भी करना चाहिए। उन्हें आदेश दिया कि बिल्ली ले आओ। तो कहीं से भी मुश्किल से किसी ने बिल्ली लाया, बिल्ली ले आकर भी कोई बड़ा बर्तन लिया, बिल्ली के ऊपर रख दिया। फिर जब अनुष्ठान हो गया तो फिर बिल्ली को छोड़ दिया गया। तो हर बार जब ऐसे कोई विवाह होता था तो उसमें अवश्य बिल्ली लाई जाती थी और बर्तन रखा जाता था। कई पीढ़ियां बीत गए और एक परंपरा बन गई। तो 10 जन्म बाद सब पूछ रहे हैं कि विवाह में बिल्ली होना आवश्यक है, किसको क्यों बिल्ली क्यों चाहिए विवाह में, बस हमारी परंपरा ऐसे चल रही है। तो लोग करते आए हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि हम सभी को कृष्ण से आते हुए गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जब ऐसे गुरु परंपरा से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो श्री कृष्ण का ज्ञान स्वयं हम तक पहुंच जाता है प्रामाणिक पद्धति से। अन्यथा हम भगवद गीता को जब हम पढ़ेंगे तो अपने अपने मनगढ़ ढंग से कोई न कोई निष्कर्ष निकालेंगे। इसलिए जब प्रामाणिक परंपरा में हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनका उपदेश स्वीकार करते हैं, तो बहुत आसानी से हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय होता है। और फिर इस संसार के जितने भी त्रिविध ताप हैं वो खत्म हो जाते हैं, संसार में प्रगति करने की जितनी भी कामनाएं हैं वो भी खत्म हो जाती है। तो कोई ये प्रश्न करेगा, अरे संसार में प्रगति करने की कामना चली गई तो आदमी करेगा कैसे काम, आदमी अपना व्यवसाय कैसे करेगा, अपने परिवार का देखभाल कैसे करेगा, कुछ प्रेरणा ही नहीं होगी उसे आगे बढ़ने के लिए। तो प्रहलाद महाराज अच्छा उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि देखो, सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम। वो कहते हैं कि देखो, जिन्होंने देह धारण किया हुआ है इस भौतिक जगत में, ऐसे लोग जो इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख मतलब इस शारीरिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है। सर्वत्र लभ्यते दैवम यथा दुखम अयत्नतः। वो कहते हैं कि दैव अर्थात अपने भाग्य में जितना सुख लिखा है उतना मिलेगा और वो सुख आकर रहेगा। यथा जिस प्रकार से दुखम अयत्नतः, जिस प्रकार से दुख बिन बुलाए हमारे जीवन में आता है वैसे सुख भी बिन बुलाए आएगा। दुख बिन बुलाए आता है ना हम सबके जीवन में, हम कोई जाके भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमें दुख दीजिए जीवन में। दुख बिन बुलाए ऐसा मेहमान बन के जीवन में आता है हम जो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा मेहमान हमारे जीवन में नहीं आए, लेकिन बार बार आते रहता है, आते रहता है। क्यों? हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार। तो जैसे है करनी वैसे भरनी, जैसे हमने पूर्व कर्म किए हैं तो वैसे वैसे हमको फल मिलेंगे। जैसे कि कहावत है, बबूल का बीज बोए तो आम कहां से होए, है ना? हमने कोई पूर्व कोई गलत काम किए हो उसके कारण हमें दुख तो मिलेगा, और यदि हमने कोई अच्छे काम किए हो तो हमें सुख भी मिलेगा। तो सुख और दुख हमारे जीवन में पूर्व कृत कर्मों के अनुसार मिलके ही रहेंगे। तो फिर क्यों हमें इतना प्रयत्न करना चाहिए दुखों का निवारण करने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए, जब दोनों अपने भाग्य में लिखे हैं? और ये सब चीजें बहुत क्षणभंगुर हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति केवल अपने जीवन के ध्येय को काम वासना तृप्त करना या भौतिक प्रगति ऐसे ही समझता है, तब वो भूल जाता है कि उसके पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार उसका फल अभी मिल रहा है, और अब जो कर्म वो कर रहा है भविष्य में उसका सुख और दुख बनेगा। वो इस बात को स्वीकार नहीं करता, नहीं श्रद्धा करता है, श्रद्धा रखता है इस बात में, और ये भूल जाता है कि कोई भगवान नाम की कोई व्यक्ति है। ये नास्तिकवाद कोई नई बात नहीं है। पुराने काल में भी एक मुनि हुआ करते थे जिनका नाम था चार्वक मुनि। इनका भी सिद्धांत आज इनके अभी अनुयायी काफी है। वो कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। वो कहते हैं, उधार लो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन घी खाओ, है ना? घी खाओ मतलब क्या कि बढ़िया ऐश्वर्य का जीवन जियो। कैसे तुम्हारे पास धन आया, कैसे ये ऐश्वर्य प्राप्ति हुई, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। खूब कमाओ, खूब भोग करो, और ऐसे तुम्हारा जीवन सफल होगा। और यदि कोई कहे कि साहब फिर ऐसा करेंगे तो पाप का क्या होगा, तो वो कहते हैं, पाप को किसने देखा है, कौन देखने वाला है? यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जी रहे हो सुखी जियो। भस्मी भूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत, ये मृत्यु के समय ये शरीर तो भस्म हो जाता है, इसके बाद में क्या होने वाला है किसने देखा है। इसलिए आगे आने वाले जीवन आदि की चिंता नहीं करो, ऐसा कुछ है नहीं, है जो यही जीवन है, तो इसी जीवन में जितना भोग कर सको करो। गीता में भी श्री कृष्ण असुर वृत्ति का वर्णन इसी प्रकार से करते हैं, कामोपभोग परमा एतावत इसी निश्चया। वो कहते हैं कि जो अपने जीवन के ध्येय को भोग समझते हैं, अपनी काम वासनाओं को तृप्त करना, भौतिक प्रगति करना, वो असुरी वृत्ति के होते हैं। तो चार्वक मुनि का सिद्धांत एक नास्तिक सिद्धांत है, न वो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, न वो ये विश्वास करते हैं कि कर्म सिद्धांत को बनाने वाला भी कोई व्यक्ति है, वो है भगवान जो ये निर्धारित करता है कि कैसे कर्मों के लिए किस प्रकार के फल मिलते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि कर्म सिद्धांत है लेकिन भगवान नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जब कोई नियम होता है तो नियम को बनाने वाला कोई होना चाहिए, नियम को बनाए रखने वाला कोई होना चाहिए, कर्मों के फल को प्रदान करने वाला कोई होना चाहिए, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं उसे देखने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे कि बेलगाम शहर में हम गाड़ी चला के जाते हैं, लाल बत्ती होती है फिर हरी बत्ती होती है, कोई तो पीछे है ना इसके, कोई तो नियंत्रण कर रहे हैं, नहीं तो कैसे कभी लाल बत्ती कभी हरी बत्ती, यूं ही तो नहीं हो सकते। तो भगवान हैं और भगवान हमारे जीवन में हर एक क्षण हमारी सहायता करते हैं, वो साक्षी हैं, हमारे हृदय में विराजमान हैं, इसलिए ऐसी पूरी श्रद्धा से हमें कार्य करना चाहिए। भगवान हमारे हर एक कर्म को देख रहे हैं। पुराने जमाने की बात है कि एक गुरुकुल में एक गुरु ने अपने शिष्यों को, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी परीक्षा ली। पुराने जमाने में परीक्षा भी अलग तरह की हुआ करती थी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा कैसे ली जाती है, ज्यादा से ज्यादा कंठस्थ करो और फिर अपने परीक्षा में सब जो कंठस्थ किया है वो लिख के चले आओ। लेकिन पुराने जमाने में गुरुकुल में ऐसे नहीं हुआ करता था। तो गुरु ने शिष्य से कहा, सारे शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें सब एक एक फल दे रहा हूं और तुम जाओ और ऐसे जगह में इस फल को खाना जहां कोई तुम्हें देखेगा नहीं। तो सारे बच्चे अलग अलग जगह पे चले गए। तो एक बच्चा वापस आ गया जल्दी ही, हाँ गुरुजी मैंने फल खा लिया। खा लिया? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। कहाँ गए थे? मैं वो पेड़ के पीछे गया। अच्छा ठीक है बैठ जाओ। दूसरा बच्चा आया, गुरुजी मैंने भी खा लिया। अच्छा किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा। कहाँ गए थे? मैं उस गुफे के अंदर गया। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो। ऐसे एक एक करके बच्चा आने लगा। बहुत देर बाद एक बच्चा रह गया था, वो बच्चा आया। वो बच्चे को गुरुजी ने पूछा, तो तुमने फल खा लिया? तो नहीं, फल हाथ में ही है। नहीं खाया? क्यों नहीं? इतना सब घूमे तुमको एक भी जगह नहीं मिला जहां कोई तुम्हें नहीं देखेगा? तो बच्चे ने बोला, नहीं मैं सब जगह गया लेकिन ऐसे कोई जगह मुझे नहीं मिला जहां कोई देखने वाला नहीं है। कहीं गए तो पेड़ देख रहे थे, कहीं गए तो चांद देख रहा था, दिन के समय पे सूरज देख रहा था, तारे हैं, आसमान है, हवा है, कितने कीड़े हैं, कितने प्राणी हैं, पंछी हैं, और साथ साथ कोई भी नहीं है तो भगवान देख रहे हैं। तो ऐसे कोई जगह नहीं है जहां मैं भगवान से छुप के कोई काम कर सकता हूं। तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे का आलिंगन किया और कहा कि तुम ही सब अच्छी तरह से सीखो, जो भी मैंने अभी तक समझाया है, पढ़ाया है, केवल तुम ही सच्चे विद्यार्थी हो। अन्यों ने तो केवल कंठस्थ किया है, मैंने जो मंत्र सुनाया वो सब कंठस्थ किए, लेकिन इन मंत्रों का तात्पर्य क्या है, इसका सार क्या है, वो नहीं समझे है, लेकिन तुम समझे। तो जो व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि भगवान साक्षी है हमारे कर्मों के और हर एक कर्मों का फल का उत्तर हमें देना पड़ेगा, तो वो बड़े सावधानी से कर्म करेगा। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति था, उसने कहा कि भगवान नहीं है और मैं साबित करूंगा, तो ऐसे तर्क कर रहा था लोगों से। आखिर उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी उपवास करूंगा और यदि भगवान है तो देखते हैं कि कैसे वो मेरा उपवास को तोड़ते हैं। मैं जाके उपवास करूंगा जंगल में जहां कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से, इस भावना से वो व्यक्ति जंगल के अंदर चला गया। जंगल में जाके बैठा, कुछ कुछ काम में अपने आप को व्यस्त रख रहा था। अब दैव से ऐसे हुआ कि उस जंगल से थोड़े डाकुओं का दल जा रहा था। वो डाकू लोग बैठे वहां पर और देखा कि दूसरा एक आदमी वहां बैठा हुआ था, वो अपनी भोजन लेके बैठा था। लेकिन जैसे उसने डाकुओं को देखा, वो उठ के भाग गया। फिर तो डाकू आए हैं तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, बढ़िया भोजन यहां मिल गया, हमको कोई इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बैठे, और जैसे ही बैठे उन्होंने सोचा, अरे कुछ तो गड़बड़ लगता है, हो सकता है किसी ने इसमें जहर डाल दिया हो, तो पहले किसी को खाना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि ये इसमें जहर है कि नहीं है। फिर ढूंढा इधर उधर, देखा तो वो आदमी बैठा हुआ था उधर, उसको पकड़ा, आओ ये खाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा उपवास है, नहीं नहीं खाना पड़ेगा। तो डाकू ने जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया और उसका व्रत है भंग हो गया। और उसको पता चला कि हाँ, भगवान तो है। भगवान किसी को भूखा रखना चाहते हैं तो जो भी करे वो भूखा रहेगा, भगवान किसी को खिलाना चाहते तो जबरदस्ती मुंह के अंदर भोजन भी डालेंगे। परंतु जब भगवान ऐसे भूखे नहीं रखते, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस निसर्ग में, इस प्रकृति में कितने प्राणी हैं, कीड़े हैं, चींटियां हैं, हाथी हैं, छोटे छोटे शरीर से लेकर बड़े बड़े शरीर तक सबका भरण पोषण हो रहा है। चींटियां हाथी वो कहां दुकान खोल के बैठते हैं, वो कहां दफ्तर में जाते हैं, वो कहां व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या उनका पेट नहीं भर रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, उसकी योगक्षेम का देखभाल मैं कर लेता हूं। योग मतलब इस जीवन में कुछ प्राप्त करना और क्षेम मतलब उसका संरक्षण करना। तो हर एक व्यक्ति इस जीवन में योग क्षेम के पीछे है। सभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक वस्तुओं को प्राप्त करें और प्राप्त करने के पश्चात इनकी रक्षा करें। प्राप्त करने में भी बहुत तनाव है, जब प्राप्त नहीं करते हैं तो दुख हो जाता है, प्राप्त करने के बाद उल्लास होता है, आनंद होता है, परंतु फिर चिंता शुरू हो जाती है कि इसकी रक्षा कैसे करें, चोरों से, इनसे, उनसे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा चिंतन मनन करता है उसे योगक्षेम की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं देखभाल करूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभुपाद जी इसके बारे में एक सुंदर कहानी बताया करते थे, एक ब्राह्मण संत के बारे में जिनका नाम था यादवाचार्य। वो एक बार भगवद गीता का पाठ कर रहे थे, जैसे कि उनका नित्य नियम था। तो पाठ करते करते वो गीता के 9वें अध्याय में पहुंचे। 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में पढ़ा उन्होंने यही बात, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उन्होंने सोचा कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग क्षेम की वो रक्षा करेंगे, वो देखभाल करेंगे, अहम मैं स्वयं करूंगा। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहामी अहम, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं योग क्षेम का देखभाल करूंगा। तो यादवाचार्य के मन में थोड़ा सा संशय हुआ और उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो हरेक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आके उसकी रक्षा करेंगे, उसके भरण पोषण का देखभाल करेंगे। तो सोचे नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हो सकता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा अपने शक्तियों के द्वारा भरण पोषण करेंगे, स्वयं कैसे भरण पोषण करेंगे, ये तो बहुत ही विश्वास करने के लिए कठिन लगता है। तो फिर सोचते सोचते उन्होंने उस अहम वहामी अहम को काट दिया और भिक्षा के लिए जाने का समय हुआ। फिर बाहर भिक्षा के लिए गए और घूमते घूमते कहीं से कुछ मिला, कुछ चावल मिला, कहीं कुछ क्या मिला। उस दौरान दो सुंदर से बच्चे यादवाचार्य के घर में आए। यादवाचार्य की पत्नी थी वहां पर घर में, दोनों बहुत गरीब थे इसलिए उसने दरवाजा भी ठीक से खोला नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं थे। तो जब उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा तो देखा कि बहुत दो सुंदर बच्चे वहां पे खड़े हैं और इन बच्चों के पास दो बड़ी बड़ी टोकरियां हैं और उन टोकरियों के अंदर तरह तरह के सब सामग्री हैं खाने पीने के लिए, सब्जियां हैं, चावल है, गेहूं है, बहुत दूध है, सब कुछ है, शक्कर घी सब था वहां। तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे तुम कौन हो और ये सब क्या है, किसने भेजा है और क्यों आए हो तुम ये सब यहाँ लेकर। तो बच्चों ने कहा कि आपके पति यादवाचार्य ने हमें भेजा है यहाँ पर। अच्छा ये सब दिया है, हाँ तो ठीक है, लेकिन तुम अंदर आओ, हाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ और फिर तुम जाना। नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं आएंगे आपके घर के अंदर। क्यों नहीं आओगे, हम बहुत डरते हैं। क्यों डरते हो, आपके पति से डरते हैं? हमारे पति से डरते, वो तो बहुत ही नम्र सौम्य ब्राह्मण है, बेचारे किसी को भी किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बहुत हमको मारा है। मारा है हमारे पति ने? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, हमारे पति तो ऐसे है ही नहीं। तो देखो देखो, फिर दोनों बच्चों ने अपना पीठ घुमाया और पीछे दाग थे प्रहार के। तो यादवाचार्य की पत्नी हैरान हो गई कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरे पति ने बच्चों के ऊपर हमला किया, ये तो आज हम पहली बार सुन रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मेरे पति आएंगे तो मैं देखूंगी, वो नहीं मारेंगे तुम्हें, तुम आ जाओ बैठो आराम से। तो बच्चों को बिठाया और फिर जल्दी जल्दी से कुछ पकाया और बच्चों को खिला दिया। दोनों बच्चों ने अच्छी तरह से जल्दी जल्दी कुछ खा लिया और फिर वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद यादवाचार्य आए, बड़े थके हुए थे, गर्मी के दिन थे, धूप भी कड़ी थी और थोड़ा कुछ जो भिक्षा मिला था उस दिन के लिए, सोचा था कि आज कम भिक्षा मिली है, बस इसी से अपने को काम चलाना है आज, पत्नी और हम में दोनों में अभी बांट के खा लेना है। तो जब घर में आए तो देखा कि इतना सब घर में पड़ा है, चावल फल सब्जियां बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। तो पत्नी खड़ी थी वहां पर, तो यादवाचार्य ने पूछा कि अरे ये सब कहां से आया। तो उनकी पत्नी खड़ी थी, हाँ जैसे कि आपको मालूम नहीं। अरे क्या बोल रही हो, हाँ हाँ अभी आपने बच्चों को मारना भी शुरू किया है ना। अरे क्या बोल क्या रही हो। तो फिर धीरे धीरे से पत्नी को संदेह हुआ कि कुछ यहाँ गड़बड़ है। यादवाचार्य भी सोच रहे थे क्या हो रहा है, कोई दोनों समझ में नहीं आ रहा था। फिर यादवाचार्य ने कहा बताओ तो सही हुआ क्या। फिर पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे दो सुंदर बच्चे आए थे, ये दो टोकरियां भर के लेकर आए, कहा कि आपके पति ने यहाँ भेजा है हमें, यादवाचार्य विप्र ने भेजा है, और हमने पूछा कि तुम आओगे अंदर खाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, और पीठ पे दिखाया कि आपने हमला किया था उनके ऊपर। अच्छा मैंने, तो अचानक फिर यादवाचार्य को याद आया, सीधे भगवत गीता के अपने पुस्तक के पास गए, उनका पुस्तक खुला हुआ था 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, और वहां जो उन्होंने काटा हुआ था वो अब निकल गया, अब वो नहीं था। तो जैसे उन्होंने देखा तुरंत उन्होंने पूछा, अरे कैसे दिखने में थे वो दो लड़के? तो फिर पत्नी ने कहा, एक सांवले रंग का लड़का था और बहुत सुंदर था दिखने में, उसकी आंखें कमल नयन जैसे थे, कमल पुष्प कमल पत्ते जैसे थे, और उसके दांत भी मोतियों के समान थे, बाल में मोर पंख था, सुंदर माला भी पहनी हुई थी फूलों की, और पीले रंग की धोती पहनी थी। दूसरे बच्चे का वर्णन करो, वो बहुत गोरा सा था और दोनों दिखने में एक जैसे थे, केवल एक सांवला एक गोरा। तो यादवाचार्य वहां ने अपने कपाल पे हाथ थम दिया और वहां बेहोश होकर गिर पड़ा, और जब ऊपर आए फिर आंखों में आंसू भर गए और कहने लगे, तुम्हारा कितना सौभाग्य है, तपस्या तो मैं तो इतना सब पढ़ाई मंत्र पाठ ये वो सब कर रहा था, लेकिन दर्शन कृष्ण के हुए तुम्हारे लिए, मुझे नहीं हुआ, तुम्हारा धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण और श्री बलराम तुम्हारे पास आए, तुम्हें दर्शन दिया, तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण किया उन्होंने, तुमसे वार्तालाप की, क्योंकि तुम श्रद्धालु थी, मैंने संशय किया, लेकिन देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि संशयात्मा होने के बावजूद वो मेरे घर में आए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मैंने जो भगवत गीता में लिखा है वो सही लिखा है, झूठ नहीं है। प्रभुपाद जी का कहते हैं थे कभी कभी कि श्री कृष्ण अवतार लेते हैं हम सबको सिखाने के लिए, सत्य सिखलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए भगवत गीता का हर एक वाक्य सत्य है, इसलिए हमें चाहिए कि इन वचनों के ऊपर हम श्रद्धा रखें। जब श्रद्धा रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए इस आधुनिक काल के लिए बहुत सरल उपाय बताया है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो माम एव वर्षसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल ये चार चीजें करो, मन मना सदैव मेरा स्मरण करो, भव मत भक्तः मेरा भक्त बनो, मत याजी मेरी उपासना करो, मेरी सेवा करो, माम नमस्कुरो मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, बस ये चार चीजें करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सत्यम ते प्रतिजानी में प्रयोसी में, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम मेरे पास लौट कर आओगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के तुम मेरे पास चले आओगे। तो ये हमारे समस्त समस्याओं का समाधान है। जो व्यक्ति यह इस भवसागर से छूट के, यहाँ के त्रिविध तापों के दबाव से छूट के जाना चाहता है बाहर, इस जीवन में रहते हुए भी सच्चे सुख की अनुभूति करना चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। ये चार चीजें श्री कृष्ण ने बहुत सरल है बताई है। तो इन चार चीजों को हम कैसे कर सकते हैं? भक्तों के संग में आके, भक्तों के संग में आकर ही श्री कृष्ण पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमें कपड़ा चाहिए तो कपड़े के दुकान में जाएंगे, हमें कुछ गेहूं आदि चाहिए तो किराने के दुकान में जाएंगे, हमें कुछ गहना चाहिए तो सराफ की दुकान में जाएंगे, तो हमें कृष्ण चाहिए तो कृष्ण भक्तों के संग में जाना चाहिए, वहां कृष्ण उपलब्ध है, आसानी से प्राप्त होते हैं श्री कृष्ण। ये कृष्ण का ही वचन है। वो कहते हैं कि भक्तों के लक्षण क्या होते हैं? मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस्य माम नित्यं तुष्यंति च रमंति च। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो ये मेरे भक्त होते हैं। स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे भक्त कौन होते हैं। मत चित्ता मत कत प्राणा बोधयंतः परस्परम। मेरे भक्त वो होते हैं जिनका चित्त हमेशा मुझ में समाया हुआ होता है। मत गत प्राणा, उन्होंने अपने मुझे उनका प्राण धन मान लिया है। और परस्पर आपस में केवल मेरी बातचीत करते हैं, दुनिया की बातचीत करने में कोई रुचि नहीं है, केवल मेरे बारे में बात करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, इसी में तुष्ट रहते हैं, अन्य किसी चीज में वो रमण नहीं करते हैं। तो यह है भक्तों की पहचान। तो भक्तों के संग में आके ये सब चीजों का अनुशीलन करना बहुत सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्य युग में ध्यान का मार्ग बतलाया था संसिद्धि की प्राप्ति के लिए, लेकिन इस कलयुग में ध्यान करना बहुत कठिन है। आदमी ध्यान के लिए बैठ जाता है तो फोन बजने लगता है या घंटी दरवाजे की बज जाती है या कुछ न कुछ पड़ोस में टेलीविजन चालू हो जाता है या बाहर गाड़ी की आवाज आने लगती है या कुछ भी नहीं हो, हम कहीं जाना चाहते एकांत स्थान में तो एकांत स्थान मिलता ही नहीं, जंगल रहे कहां आजकल। और ऐसा कोई जंगल मिल भी जाता है तो हमारे बेचैन मन को साथ में ले जाते हैं, तो मन कुछ न कुछ कहते रहता है। तो ध्यान इस कलयुग में संभव नहीं है। त्रेतायाम यजतो मखये, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने की विधि बताई गई थी, जैसे कि शास्त्र में वर्णित है विशाल यज्ञ, रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ने से ये वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं किस प्रकार से दशरथ महाराज ने ऐसे विशाल यज्ञ संपन्न किया था कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उन्होंने एक सारा नया शहर ही बना डाला जिसमें लाखों लोग आके रहने लगे उस यज्ञ के लिए, और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो लोग अपने अपने स्थान में चले गए। जितने पुरोहित थे, जितने अतिथि आने वाले थे, लाखों लोगों के लिए पूरी व्यवस्था कर ली। विशाल विशाल यज्ञ, लाखों लाखों लीटर दूध, गाय का दूध और घी, शुद्ध घी। तो आजकल गाय ही रहे कहां। हमें मोबाइल फोन में कोई आज संदेश मिल रहे हैं कि अभी बंबई में सबसे बड़ा कत्ल खाने को और बढ़ाया जा रहा है, देवनार है ना, ताकि हर रोज कितने 1.5 लाख ऐसे कुछ पता नहीं कितने पशुओं की हत्या होने वाली है, गायों की हत्या भी होने वाली है। तो आधुनिक काल में भारत में इतनी बड़ी संख्या में गायों की हत्या होती जा रही है। जब नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के साथ अनेक ऋषिगण उपस्थित थे, उन्होंने अनेक प्रश्न किए सूत गोस्वामी से, सूत गोस्वामी ने उत्तर दिए। जब वर्णन आया कि परीक्षित महाराज भ्रमण करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो कि बैल के ऊपर प्रहार कर रहा था, तो सारे ऋषि मुनियों को आश्चर्य हुआ। अरे ऐसे भी हो सकता है कलयुग में कि गाय बैल के ऊपर कोई हाथ उठाएगा। वो इतनी ऐसी बात थी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी कोई दिन आएगा जब लोग गाय बैल के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन ये कलयुग के लिए तो साधारण बात हो गई है। विदेशों की बात छोड़िए, अब भारत भूमि में भी जो पुण्य भूमि कही जाती थी, ऐसे पुण्य भूमि में भी इतना कुछ हो रहा है। तो जब गाय भी नहीं है तो वो पुण्य भावना भी नहीं है, वो दूध तो नहीं मिलेगा, दूध नहीं है तो घी कहां से मिलेगा, तो फिर यज्ञ कहां से होंगे। तो ये कलयुग के लिए भी उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में विशाल बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके ऐश्वर्यशाली आराधना पूजा अर्चना करने की विधि बताई गई थी। परंतु यहाँ एक मंदिर बनाते बनाते कितना समय लगता है, और एक मंदिर बनाने के बाद बहुत मुश्किल से उसको बनाए रखना कितना और मुश्किल है। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके उनको चलाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। तो कलयुग में हर चीज का घटन होता है, हर अच्छे गुण का घटन होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग के लक्षणों को अच्छी तरह से पहचान कर एक उपयुक्त मार्ग हम सबके लिए दिया है। कलो तत् हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन का पथ हम सबके लिए है। हरि कीर्तन जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कितना आसान पथ है, इसमें बच्चे भी भाग ले सकते हैं। किसी को संस्कृत पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, हर एक व्यक्ति इसमें शामिल होकर दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है, और यही एकमात्र उपाय है इस कलयुग के लिए। अन्यथा कलयुग में देखा जाए तो सब जगह दोष ही दोष है। कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। सुखदेव जी परीक्षित राजा को कहते हैं कि हे राजन, ये कलयुग जो है ना, ये दोषों का सागर है। सब जगह केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, परंतु इस दोषों के सागर में एक महान गुण है, और वो महान गुण है श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन। और इस संकीर्तन का आश्रय लेकर व्यक्ति इस भवसागर को पार करके भगवान श्री कृष्ण के नित्य वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का उद्देश्य है। तो हरि नाम लेना इतना आसान है, और ऐसे सहज उपाय से हम ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, और वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। बस भगवान श्री कृष्ण के नाम को हमारे जीवन में हम स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के नाम दो प्रकार से लिए जाते हैं। एक है जप, जो हमारी माला के ऊपर हम करते हैं, और दूसरा है कीर्तन, जो हम वाद्यों के साथ संगीतमय ढंग से करते हैं। एक को कहते हैं जप, दूसरे को कहते हैं कीर्तन, परंतु दोनों ही एक दृष्टि से देखा जाए तो कीर्तन है। तो भगवान के नाम को लेना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति के पथ को स्वीकारेंगे, भाग्य का उदय हमारे जीवन में निश्चित ही होगा। जीवन में ऊंचे आनंद के रस का अनुभव होगा, और इस माया भरे संसार में रह के भी हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस प्रवचन के पहले श्रीमान HD काटवा जी, अभी तो वो दीक्षा के बाद गोलोक चंद्र दास हुए हैं, उन्होंने स्वयं अपना अनुभव बताया कि उनका जीवन पहले कैसे था और अब कैसे हुआ है। ये है चमत्कार भगवान के नाम का, बड़े आसानी से ये सब हो गया। और किस प्रकार से पूरा काटवा परिवार अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने उत्साह से, इतने प्रेम से, लगन से लगे हुए हैं, तो ये प्रमाण है श्री कृष्ण की कृपा का, कि जो भी व्यक्ति हृदय से श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण कभी भी उनको त्यागते नहीं है। ये भगवान के गुण होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के पास जाते समय कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। बहुत ही शीघ्र भगवान श्री कृष्ण परिणाम देते हैं, लक्षण प्रदान करते हैं। तो बहुत आभारी हैं श्रीमान गोलोक चंद्र प्रभु के और उनके परिवार के कि उन्होंने ऐसे अच्छे सत्संग का आयोजन किया। हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आपका समय निकालकर आप यहाँ पर आए। आप अनेक अन्य चीजों को कर सकते थे। आज रविवार है, रविवार में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं इधर उधर जाने में, लेकिन इन कार्यों को छोड़कर आप यहाँ सत्संग के लिए आए हैं अपना समय निकालकर, इसलिए आप सबके भी आभारी हैं। और आपसे इतना ही नम्र निवेदन है कि आप बड़े गंभीरता से, हृदय से इस कृष्ण भक्ति के पथ को स्वीकार कीजिएगा, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। प्रभुपाद जी ये बात बार बार कहा करते थे, खास करके इस श्लोक के बारे में बात करते समय जिसकी चर्चा हमने की, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि कृष्ण भक्ति करने वाले का नुकसान कभी भी नहीं होगा। प्रभुपाद कहा करते थे जब वो विदेश गए कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु 80 हो गई है। जब 60 साल की उम्र में मैंने संन्यास लिया तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि अरे मैं मेरे 5 बच्चों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए करना उचित है, तो मैं आया। और अब देखो कृष्ण ने मुझे 5 बच्चों के जगह 10,000 बच्चे दिए, तुम सब मेरे शिष्य हो और इस प्रकार से मेरी देखभाल करते हो, मेरी सेवा करते हो, मेरे हर एक बात को मानते हो जो मेरे बच्चे भी नहीं करते। तो मैंने भगवान के सेवा के लिए 5 बच्चों को त्यागा और भगवान ने मुझे 10,000 बच्चे दिए। इसलिए वो कहा करते थे कि जो कृष्ण की के लिए कुछ सेवा करता है वो कभी उसका नुकसान नहीं होता। इसका मतलब यही नहीं है कि सभी को संन्यास लेना है, केवल एक उदाहरण था। हर एक क्षेत्र में कृष्ण भक्ति हर एक व्यक्ति के लिए है। जहां भी हम स्थित हैं, अपने स्थान में स्थित होकर हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप गृहिणी हो, जो भी आप हो, अपने स्थान में रहिए और भगवान कृष्ण के शरण को ग्रहण कीजिए। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायसो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर, अपने स्थान में स्थित होकर जहाँ भी आप हैं केवल भक्तों के संग में आइए। जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करिए, भगवान कृष्ण की सेवा करिए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे खिल उठता है। ये कोई भी कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कृष्ण भक्ति के पथ को बड़े उत्साह से और गंभीरता से स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप बिना संकोच किए आप पूछ सकते हैं।